ओम शांति। विशेष आज का विषय है स्वराज्य से भविष्य राज्य की प्राप्ति। अभी बाबा की लेटेस्ट मुरली चली, बाबा ने कहा कि आपने स्वराज्य को क्या करो, चेक करो, और केवल चेक ही नहीं करो लेकिन उसमें चेंज ला करके क्या करो, भविष्य का अखंड राज्य अधिकारी प्राप्त करो। क्योंकि वर्तमान के जो संस्कार हैं यही संस्कार हमारे भविष्य में रहेंगे। तो अगर वर्तमान समय हम स्वराज्य अधिकारी है तभी हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अगर हमने वर्तमान समय अपने कर्मेंद्र पर राज्य नहीं किया, वर्तमान समय अगर कर्मेंद्र पर राज्य नहीं किया तो भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भविष्य का राज्य प्राप्त करने का आधार क्या है, वर्तमान समय का स्वराज्य। तो इसलिए चेक करना है कि मेरे राज्य में स्वराज्य में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा ना भविष्य का राज्य कैसा है, जिसमें एक राज्य होगा। तो चेक करना है क्या मेरे इस स्वराज्य में एक राज्य है, या कभी कभी माया का भी राज्य चलता है, कभी कभी माया का भी दबाव तो नहीं चलता, माया दखल तो नहीं देती। इसको चेक करना है और फिर इसको चेंज भी करना है। क्योंकि बाबा ने हर आत्मा को राज्य अधिकारी बनने के लिए चांस दिया है, हर एक बन सकता है, लेकिन उसका फार्मूला क्या है, राजा बनने का फार्मूला है। फार्मूला ये नहीं रखा कि आप कितना साल से ज्ञान में चलते हैं, आप समर्पित है या आप धन से बहुत सेवा करते हैं, यह फार्मूला नहीं। फार्मूला कौन सा है, जो स्वराज्य संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य का राजा बनेगा। अगर ऐसा बाबा करता कि बहुत साल से जो ज्ञान में चलते हैं तो जो नए नए आए उसको तो चांस नहीं मिलता, ये समझो जो गृहस्थ में रहते उसको भी राजा बनने का चांस नहीं मिलता फिर। इसीलिए बाबा ने वो फार्मूला नहीं रखा, लेकिन फार्मूला कौन सा रखा है, जो स्वयं के इंद्रियों का राजा बनेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, जैसे यहां हम करेंगे जो संस्कार डालेंगे उस स्वरूप से बनते हैं। अगर कोई ज्ञान में चलता है, बहुत समय से ज्ञान में चलता है, ये नया नया भी आया है ज्ञान में तो चलता है, रोज मुरली सुनता है, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन कभी भी वो धन से सेवा नहीं करता, कभी भी ज्ञान रत्नों से सेवा नहीं करता, ज्ञान किसी को नहीं सुनाता, और वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहा है जिसके कारण उस वो इंद्रियों के भी अपने वश में है, संस्कारों के वश है, कर्मेंद्र के वश है, लेकिन ज्ञान छोड़ा नहीं है, तो ऐसी आत्मा को भविष्य में क्या पद मिलेगा, दास दासी का पद मिलेगा। क्योंकि वो इंद्रियों के दास बनकर के रहे, इंद्रियों के वश होकर के रहे। अगर कोई ज्ञान में चलता है, रोज मुरली सुनता है, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जो कि अपने इंद्रियों को संयमित कर सके, फिर भी पुरुषार्थ तो छोड़ा नहीं, यथासंभव धन से भी सेवा कर रहे हैं, औरों को ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो भविष्य में वो साहूकार बनेगा। क्योंकि उसने संगम में क्या किया था, धन से सेवा की थी, ज्ञान भी औरों को सुनाया था। अगर कोई ज्ञान में चलते हैं, धन सेवा में नहीं लगाते, ज्ञान भी औरों को नहीं सुनाते, लेकिन वो गुप्त इतना अंदर से अंदर इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ के आधार से उन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है, बस स्वयं को ही देखता है, स्वयं खूब पुरुषार्थ गुप्त कर रहे हैं। तो ऐसी आत्मा राजा तो बनेंगी, लेकिन संपन्न राजा नहीं बनेंगी, धन की कमी रहेगी, औरों को औरों से उधार लेना पड़ेगा। और जो ज्ञान में चलते हुए इंद्रियों को भी अपने संयमित रखा है, धन से सेवा, तन से सेवा, हर प्रकार की सेवा करते हैं, ऐसी आत्मा संपन्न राजा बनेंगे। तो हम अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन से ट्रैक पर हूं, दासी वाले ट्रैक में हूं, साहूकार वाले ट्रैक में हूं, या कौन से ट्रैक में हूं। अभी भी उस ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। श्री बाबा ने कहा कि बच्चे अखंड अगर राज्य प्राप्त करना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। इसलिए बाबा ने खास राज दुलारे शब्द यूज किया। राज दुलारे क्यों? क्योंकि तीन तकत के मालिक हो। पहला तकत है स्वराज्य का तकत, दूसरा तकत है बाप दादा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का तकत। लेकिन भविष्य का तकत प्राप्त करने का आधार और बाप दादा के दिल तकत का तकत प्राप्त करने का आधार है स्वराज्य का तकत। जो स्वराज्य के तकत पर बैठता है वो अपने इंद्रियों पर संयमित रखता है, और ऐसी आत्मा ही बाप के दिल तक पर बैठने के अधिकारी बन सकते। ये तो कुछ भी गलतियां करेंगे, इंद्रियों पर संयमित नहीं रखेंगे और बाप के दिल तख्त पर रखने की बैठने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बैठ पाएगा। और जो स्वराज्य के तख्त पर नहीं बैठता, बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं बैठता, वो भविष्य के तख्त पर भी नहीं बैठ पाता। इसलिए अगर भविष्य का तख्त प्राप्त करना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना बड़ा जरूरी है। भविष्य का राजा बनने का आधार है वर्तमान का राजा। कहते ना, हर स्टार की अपनी अपनी दुनिया होते हैं, हर स्टार में अपनी दुनिया है। तो कौन से स्टार? ये आत्मारूपी स्टार की हर एक की दुनिया है, और जो उस दुनिया में राज्य करता है वही इस स्थूल दुनिया में भी राज्य कर सकता है। ये शरीर भी हमारी एक दुनिया है। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है और बाकी भूमि है और तत्व है, इसी तरह शरीर रूपी दुनिया में भी 70% पानी है और बाकी और तत्व है। जैसे इस दुनिया में 750-800 करोड़ लोग रहते हैं, इसी तरह इस दुनिया में भी इतने ही जीवाणु रहते हैं। तो ये एक बाबा ने हमें सैंपल की दुनिया दी है। तो जो इस दुनिया का राजा है वही इस दुनिया का भी राजा बन सकता है। इसीलिए पहले अपने ऊपर राज्य करना है। नहीं तो कई बोलते मेरा कोई कहना ही नहीं मानता। क्यों कहना नहीं मानता? जिसकी स्वयं की इंद्रियां कहना नहीं मानती उसका कोई कहना नहीं मानेगा। शासन करने का तरीका है जो अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, आत्मा का शासन इंद्रियों पर है वही दूसरे के ऊपर अनुशासन कर सकता है। अगर मेरा कोई कहना नहीं मानता है, ये निशानी है मेरी अपनी इंद्रियों पर मेरा संयम नहीं है। जिसका अपने इंद्रियों पर संयम होगा उसके वाणी में बल होगा, कर्मों में बल होगा। इसीलिए अपना राजा बनना है, इसीलिए कहते भी है ना, तुम अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को ज्ञान सुनाओ। घर कौन सा? लौकिक घर नहीं है, ये शरीर आत्मा का घर है। तो इस घर को हमें पहले सुधारना है। इस घर में जो भी रहते हैं उनको ज्ञानी बनाना है। घर में कौन कौन रहता है? मन है, बुद्धि है, आंखें है, कान है, मुख है, इन सबको ज्ञानी बनाना है। और जब इनको ज्ञानी बनाएंगे तब हमारी चाल और चलन से भी, जो बाबा पिछले मुरली से अटेंशन खिंचवा रहे, अब चाल और चलन से सेवा करो। वो कौन कर सकता है? जिसकी इंद्रिया अपने संयमित है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से ही भविष्य का राज्य मिलेगा। इसलिए चेक करना है क्या मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है। एक राज्य है, एक धर्म है। कई बोलते हैं ना, सत्युग कब आएगा? सत्युग लाने वाले कब आएगा? जब अपने शरीर रूपी देश में जब एक धर्म एक राज्य आएगा तब सत्युग भी आएगा। अगर इसमें ही एक राज्य एक धर्म नहीं हुआ तो कैसे आएगा? और आना रुकेगा नहीं, आएगा, लेकिन उसमें फिर वही जाएंगे जिन्होंने यहां वो संस्कार डाले हैं एक धर्म के एक राज्य के। तो इसलिए हमें चेक करके चेंज करना है। एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, और धारणा है पवित्रता की, मनसा वाचा कर्मणा। तो एक धर्म है क्या? कभी कभी अधर्म भी हो जाता है, अपवित्रता भी आती है। क्या मेरा इस राज्य में लॉ और ऑर्डर है? लॉ है बेफिक्र बादशाह रहना, लॉ क्या है? बेफिक्र बादशाह। करण करावनार बाबा है, वो करा रहे, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ये है लॉ। लेकिन फिर भी हम चिंता में रहते, परेशान में रहते, इसका मतलब हम लॉ में नहीं है। और ऑर्डर क्या है? श्रीमत, या बाप के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं या माया के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, चेक करना है। मेरे राज्य में कभी कभी सैल्वेशन के आधार से, भगवान का ना, सैल्वेशन के आधार से या प्रशंसा के आधार से तो नहीं चलते। अगर प्रशंसा मिल गई या कुछ सैल्वेशन मिल गया तो उसे मेरे इस राज्य में कुछ गड़बड़ तो नहीं होती। आजकल तो सेवा के लिए बहुत सारे सैल्वेशन मिलते हैं, लेकिन उस सैल्वेशन के कारण मेरे राज्य में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होती। इंटरनेट, ईमेल, कई चीजें मिलते रहते हैं, लेकिन उन सैल्वेशन के कारण कि मेरा स्वराज्य तो नहीं जा रहा है। ऐसी चीजें देख करके, ऐसी बातें देख करके, तो ये चेक करना है क्या मेरे इस राज्य में सुख और शांति अखंड है, नेचुरल है, या कभी माया आकर के मेरे सुख और शांति को छीन लेती है, चेक करना है। अगर कुछ है, क्योंकि अब ये रिजल्ट चल रहा है, बस लास्ट का टाइम है, क्योंकि आज तक जितना हमने योग लगाया, योग किसी लिए लगाया था? अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए। अधारणा किसी लिए की थी? अपने इंद्रियों पर संयमित करने के लिए। जो भी आज तक हमने जो पुरुषार्थ किया उसका रिजल्ट है स्वराज्य अधिकारी बनना। अब इतना दिन मैंने पुरुषार्थ किया, योग लगाया, फिर भी अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, इसका मतलब जो कुछ आज तक किया उसकी विधि यथार्थ नहीं थी, वो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं था। तो अभी भी अगर जो दीन मेरे लिए है, अब कितने दिन मिलेंगे वो तो गुप्त है, तो कम से कम उतने दिनों में तो मैं राजा बन करके रहूं, ताकि सत्ययुग में एक दो जन्म तो मुझे राजा का मिल जाए। नहीं तो समझो कोई 10-15 साल उस संगमयुग के ज्ञान में चलने के चांस मिला था, और उसके बाद सृष्टि में परिवर्तन हो गया, लेकिन 15 साल में उसने 10 साल तो ऐसे ही गवाया, इंद्रियों के अधीन होकर के गवाया, टाइम वेस्ट किया, और उसके बाद उसकी कोई ऐसी मुरली सुन ली, ऐसा कोई सहयोग मिला, जो 5 साल उसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके इंद्रियों को राजा बना, तो उसको सत्ययुग में तो राजा ही नहीं मिलेगी, लेकिन त्रेता में 3-4-5 जन्म मिल जाएगा, क्योंकि 10 साल उसने ऐसे ही गवाए। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करना है, क्या मैं राजा का पार्ट बजाने के हकदार हूं? अगर मैंने मन को कहा है, हे मन तुम आधा घंटा तक परमधाम में जाकर के बैठना, ये राजा के ऑर्डर है, आत्मा के ऑर्डर है, लेकिन मन मानता ही नहीं, मन कहीं मार्केट में चला जाता है, इसका मतलब राजा की बात मंत्री ने नहीं मानी। तो जब यहां ही आपका मंत्री नहीं मानेगा तो वहां सत्ययुग में कौन मानेगा? इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे अब ये छोटी छोटी बातें, इसको देखना उसको देखना, ये सब छोड़ करके अंदर अपने अंदर जाओ, अपनी चेकिंग करो, कितना मैंने अपने पर राज्य कर रहा हूं, अपने कर्मेंद्र को कितना संयमित रख रहा हूं। तो ये है वास्तव में पुरुषार्थ। तो यही पुरुषार्थ अब हमें क्या करना है, करना है। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। बाबा ने शुरू शुरू में कि डायरी में लिखते थे, हे मन हे मंत्री आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय को दरबार लगा करके उनके ऊपर अटेंशन खिंचवाया। लेकिन आज हमारा अपने ऊपर ही क्या नहीं है, ध्यान नहीं है, और इसलिए हमें यही पुरुषार्थ करना है, रोज अपना दरबार लगाना है, और दरबार लगा करके हर कर्मेंद्र को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाना है। एक इस स्वराज्य में एक बाबा का ही राज्य स्थापन करना है, एक धर्म स्थापन करना है, और सुख और शांति। सुख शांति कब होगी? जब हम संपन्न और संपूर्ण होंगे, हर खजाने से संपन्न। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी किस तरह से हम स्वराज्य अधिकारी बने, हर कर्मेंद्र को अपने शासन में चलाना है, और ये कंट्रोलिंग पावर, कर्मेंद्र को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। जितना जिसके पास योग बल होगा उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी, आत्म जागृति रहेगी, और जिसकी आत्म जागृति है उतना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना आत्मा राजा शक्तिशाली होगा, और जो राजा शक्तिशाली है कोई भी शत्रु उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसी तरह याद से हमें शक्तिशाली बनना है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बने, जिससे हम अपना इंद्रियों पर शासन कर सकेंगे। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टक्केशिर बाजी, टके शेर खा जा। अगर इस राज्य में शरीर रूपी राज्य में अगर राजा सोया है तो मुख जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे देखेगी, सब पूरा हर एक अपना राज्य चलेगा और वहां सुख शांति नहीं होगी। उस राजे के पास सुख शांति नहीं होगी। तो इसलिए जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। तो हम कैसे स्वराज्य करें, कैसे हम मायाजीत बने, हर कर्मेंद्र से हमें क्या करना है, बातें करनी। जैसे पहले भारत देश परातंत्र में गया, क्यों गया, अंग्रेज आकर के भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, तो अंग्रेज क्यों आए यहां, क्योंकि भारत में अलग अलग नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, और उस नवाबों के तरफ भारतवासियों का ज्यादा ध्यान नहीं था, उनको इतना सम्मान नहीं देते थे। तो इसलिए उस नवाबों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों से मिल गए, और जब अंग्रेज लोगों से मिल गए तो काफी सारे नवाब अंग्रेज लोगों से मिल गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उसके कारण भारत पूरा परातंत्र में गया। तो इसी तरह यह शरीर भी हमारा एक देश है, और इस देश में आत्मा राजा का शासन कहां है, भ्रुकुटी में है, आत्मा राजा भ्रुकुटी में रहता है, और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब भी है, कौन से, कान मुंह आंख, ये कर्मेंद्र है, नवाब है, लेकिन हम इस शरीर रूपी देश में ये जो कर्मेंद्र हमें कितनी मदद कर रहे हैं। अगर ये कर्मेंद्रिया ना होती, अगर कान ना होते हैं तो हम सुन सकते थे, मुख ना होता तो हम बोल सकते थे, ये कितनी मेहनत करते, लेकिन कभी हम इन कर्मेंद्र की वाहवा नहीं की, उनको कभी शाबाश की नहीं दी, और बातों में हम बिजी हैं, लेकिन जो मददगार है उनको कभी पूछते नहीं। और इसीलिए कर्मेंद्र क्या करते हैं, माया से मिल गई, और उसके कारण जब कर्मेंद्र माया से मिल गए तब जाकर के माया ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अर्थात आत्मा के ऊपर अटैक किया, और उसके कारण अब हमारा यह शरीर रूपी देश क्या है, परातंत्र में है। तो अब इसको स्वतंत्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे भारत को स्वतंत्र कैसे बनाया, हिस्ट्री सुनी होंगी ना, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अलग अलग जगह पर सभा लेते थे, जिसके लिए कई मशहूर भी है, जैसे जालियांवाला बाग, ऐसे कई जगह जगह पर सभा लेकर के भारतवासियों को जगाया, अखबार भी निकाले उसके लिए, और जब सभी भारतवासियों को जगाया कि अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, तब भारतवासी जगे और सभी ने एक नारा लगाया, कौन सा, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक आदि आदि, और तब जाकर के देखा कि यहां हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, खदेड़ दिया, इसीलिए वो चले गए और फिर भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसी तरह इस शरीर रूपी देश को हमें स्वतंत्र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी हर इंद्रियों को माया से जागृत करना पड़ेगा। हे कान, अगर तुम व्यर्थ सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो माया ने हमें, आप लोग माया के अधीन होने के कारण, मैं राजा तो हमारे राज्य में कितना सुख था, मेरा ताज था, मेरा सब कुछ था, मेरा राज्य था, लेकिन तुम लोग माया से मिल गए इसलिए सब कुछ लूट लिया उसने। और जब हमारी कर्मेंद्रिय समझ जाए, मन समझ जाए, बुद्धि समझ जाए, जागृति आ जाए, तब हर कर्मेंद्र से मन से क्या निकलेगा, माया गो बैक। अब होता क्या है, अब आत्मा राजा तो कहता है माया गो बैक, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, कोई व्यर्थ बातें सुनाने के लिए आता है तो कान कहता है और क्या हुआ, मतलब सुन लेता है, मना आत्मा राजा कहता है कि माया को जाओ, लेकिन कान कहता है आ जाओ कोई बात नहीं। अगर बॉर्डर पर रहने वाला सिक्योरिटी कोई अगर दुश्मन से मिला हुआ है, घर का ही कोई भेदी बना है, उस घर की हालत क्या होगी? इसलिए हमें रोज क्या करना है, इन एक एक कर्मेंद्र से बातें करनी है, चेकिंग करना है। यही बाबा कहते चार्ट चेक करो। चार्ट चेक करना मतलब क्या करना, कौन से कर्मेंद्र से कोई गलत तो नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो उसको समझा करके फिर से दोबारा शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो। किरण बहन कहां की? कासगंज की किरण बहन, मिथिलेश बहन से मिले पीछे, कासगंज की किरण बहन। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे एक एक कर्मेंद्र से बातें करनी है। तो कैसी बातें करनी है, मैं आत्मा राजा हूं, ये शरीर मेरा देश है। अमृत वेले के बाद अगर 5 मिनट भी अगर ये अभ्यास करेंगे आप, अमृत वेला हम ऊपर बाबा के पास जाते हैं तो अमृत वेला योग लगा करके बाबा से शक्ति लेकर के फिर मैं आत्मा राजा इस शरीर रूपी देश में प्रवेश करता हूं। तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले क्या करो, अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके, तकत पर बैठ करके सभी कर्मेंद्र को गुड मॉर्निंग करो, और उसके बाद फिर एक एक कर्मेंद्र से बात करनी है। सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता, तुम्हारे कारण मैं ईश्वरीय महावाक्य सुन रहा हूं, इसीलिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहां रखा है, बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन तुम मुझे अंदर से गुप्त रूप से धोखा दे रहे हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। आज मैं उस खुदा दोस्त के पास गया था, उसने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी दी है, और वो तो झूठ नहीं बोल सकता। तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, क्योंकि आज कान जिंदा क्यों है, आत्मा ने कमाए हुआ खून वहां तक सप्लाई होता है, उसके कारण उसके अंदर जो जीवन है वो जिंदे है। तो किसका खा रहे है? आत्मा का खा रहे है, उसके राज्य में रह रहे है। लेकिन मिला किसे? दुश्मन से मिला है। तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, और तुम माया से मिले हो, इसीलिए हे कान तुम आज ध्यान से सुनो। अगर तुम सारा दिन आज कुछ वेरस सुनेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा, नहीं तो ऐसा नहीं राजा में कुछ भी हो रहा है, राजा कुछ भी नहीं कर रहा है। पहले जमाने के राजे क्या करते थे, अगर राजा में किसी को ऑर्डर किए हैं, अगर उसके राजे के ऑर्डर नहीं मानी तो फांसी की सजा देता था। तो हमें भी क्या करना है, कर्मेंद्र को शिक्षा भी देनी है, सावधानी भी देनी है। फिर आगे चलो मुख के पास, तो मुख की भी महिमा करो, हे मुख तुम भी बड़े भाग्यशाली हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य औरों को सुना करके, ज्ञान सुना करके दुआएं कैसे कमाता, तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी के परचिंतन करते हो, किसी को अपमान के शब्द बोलते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के मुझे बद्दुआएं देता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, तो क्या मैं तुम्हें कड़वे बोलने के लिए रखा है? तो इसलिए हे मुख तुम्हें वेरत कुछ भी नहीं बोलना है, कड़वे शब्द नहीं बोलना है, अगर कुछ आज ऐसा बोलेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर आगे चलो आंखों के पास, हे आंखें मुझे आंखें तो बहुत मिली, 84 जन्म में काफी सारे आंखें मिली है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने क्या क्या उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, उसको घंटों तक निहारा हुआ है, तो क्या उसको देखने के बाद तुम तृप्त नहीं हुए? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? इसीलिए तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना है। आगे चलो मन के पास। हे मन, देखो मैं आत्मा तो तुम्हारे से भी कम भागे चले, क्यों? क्योंकि तुम तो प्रभु के पास जा सकते हो, उसका गुणगान गा सकते हो, लेकिन तुम कभी क्या करते हो, प्रभु का गुणगान गाने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हो। अगर तुम प्रभु का गुणगान गाएंगे तो मेरा कितना फायदा होगा? इसलिए मन, तुम्हें व्यर्थ कोई भी चिंतन नहीं करना है। अगर करेंगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, देखो मैंने तो तुम्हें मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास रखा था, और इसीलिए मैंने तुम्हें इस राजाई का मंत्री बनाया है। मन कौन है, बुद्धि कौन है? मंत्री है, क्योंकि उसके ऑर्डर से सब कुछ चलता है। बुद्धि ने कहा कि यह करना है, गलत भी करना है, करेंगे सभी, कान भी करेगा, मुख भी करेगा, सब करेंगे। बुद्धि का ऑर्डर मिल गई, सब करते। तो देखो मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, लेकिन तुम मंत्री अगर गलत करेगा तो मेरी हालत क्या होगी? और मैं तुम्हारे पर विश्वास रख करके राज्य दे करके बैठा था, लेकिन तुमने तो मेरा राज्य ही गंवा दिया। इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम्हें गलत निर्णय नहीं करना है। अब जो भी ईश्वरीय कुछ नियम संयम मिले हैं उस आधार से निर्णय करना है, और उस आधार से अपना राज्य चलाना है। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी कितने भाग्यशाली हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय सेवा करने के लिए कैसे जाता, क्योंकि तुम सभी कर्मेंद्र को अपने सिर पर उठा करके मुझे लेके चलते हो। आज मुख यहां तक आया, कैसे आया? पांव ने उठा करके उसको लाया, आंखें आई, हाथ आए, सब पांव ने उठा करके लाया। इसीलिए कोई भी किसी के घर में जब व्यक्ति आता है उसके पांव छूते, क्यों? हे पांव, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया आपने। लेकिन हे पांव, तुम कभी कभी पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो सबको, तो उस समय कहना कि मुख को कहना, हे मुख तुम भले जाओ, मेरे को तो राजा ने मना किया, मैं नहीं जा सकता हूं। अगर पांव वहां जाएंगे नहीं तो मुख अकेला निकल करके जाकर के पर चिंतन करके आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर हर कर्मेंद्रिया अटेंशन रखेंगे तो गलतियां नहीं होगी। तो ये हमने क्या क्या सवेरे सभी को बताया। उसके बाद फिर रात के समय क्या करो, सोने से पहले फिर दरबार लगा दो 5 मिनट के लिए। जैसे गांव में कर ढोल बजाते थे और कहते थे भाई सभी राजा ने बुलाया, आओ दरबार है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रात को सोने से पहले सभी को बुलाना है और फिर 5 मिनट एक एक को पूछो। सबसे पहले पूछो कि कान को, हे कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने बहुत अच्छा ईश्वरीय मावक की मुरली सुनी थी, इसीलिए बड़ा धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और कुछ व्यर्थ बातें किसी की सुना रही थी, उस तुमने तो बड़ा आगे जाकर के और ध्यान से सुना था, और क्या हुआ करके, जबकि मैंने तुमको सवेरे मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना, मेरी बात तुमने नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। क्योंकि जो कान मुरली बार बार सुनते, ज्ञान की बातें सुनते, ज्ञान से संपन्न होंगे, वो परचिंतन की बातें नहीं सुनेंगे। जिस कान में ज्ञान कमी है, ज्ञान सुनकर के तृप्त नहीं हुए, वो ज्ञान परचिंतन की बातें सुनते, तो उसके लिए कौन सी सजा दो, दोबारा मुरली सुनाओ। फिर आगे चलो मुख को पूछो, हे मुख, तुम्हारा चार्ट आज कैसा रहा सारा दिन? समझो कान ने दुश्मन को अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोला था, तो कम से कम तुम्हारा दरवाजा तो बंद होता तो ताकि वहां से दुश्मन वापिस जाता, लेकिन तुमने भी कहा कि हाँ वो माता जी ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया, तुम अगर चुप होते तो आगे बात नहीं जाती, तो इसलिए तुमने भी सहयोग दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए भी सजा। कौन सी? तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। मौन है मुख की सजा। तो इसी तरह एक एक कर्मेंद्र को क्या करना है, समझाना भी है, सावधानी भी देनी है और साथ में सजा भी देनी है। इसको कहते हैं राजा। और तब जाकर के ऐसा अगर हम चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तभी क्या बन सकेंगे, अखंड राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। उसको कहते हैं राजा। राजाओं की निशानी होते हैं, राजाओं की क्या क्या निशानी होते हैं, एक तो राजा जिसको ऑर्डर करता है, राजे की ऑर्डर कोई भी टालता नहीं, उसको कहते हैं राजा। दूसरी राजा की निशानी क्या है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई भी खाली नहीं जाता। पहले कहानी आती थी ना राजाओं की, एक राजा था वो बहुत दान करता था। तो इसी तरह अगर मेरे राजा के संस्कार होंगे तो मेरे दान के संस्कार जरूर होंगे। तो कौन सा दान? ज्ञान का दान। अगर मैं दान नहीं करता हूं, इसका मतलब मेरे राजा के संस्कार नहीं है, इसलिए हमें दान जरूर करना है। तो दान के भी संस्कार हमारे वो, और राजा के क्या संस्कार होते हैं, राजा शिकार करता है, और राजा शिकार किसकी करता है, शेर की शिकार करता है। ऐसा नहीं कि राजा कोई चूहा मार करके सबको कहता मैंने चूहा मार के आया, लोग तो हंसेंगे उसके ऊपर, अरे तुम तो राजा है और तुमने चूहा मार के आया। तो इसी तरह अगर हम राजा बनने वाले हैं तो क्या हमने शिकार की है कभी, किया है माता है शिकार? शिकार मतलब कोई वो जंगल का शेर मारने की बात नहीं है। शिकार कौन सी? किसी अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, उसको कहते हैं शिकार करना। और वो भी कैसा शेर हो, ऐसा नहीं कि दो चार दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना के आ गए, वो चूहा भी ली हो गया। जिसको बाबा कहते ना क्वालिटी वाली आत्मा, माइक आत्मा, माना जिस व्यक्ति को ज्ञान सुनाने से और व्यक्ति आए, बहुत सारे सेवा हो जाए, उसको कहेंगे शेर। तो जो शेर की शिकार करता है वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसलिए अभी सेवाओं का बाबा क्यों सेवा की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि जब तक प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेगा। इसलिए शिकार करने के संस्कार भी डालने जरूरी। कई बोलते नहीं हमारा कोई सुनता ही नहीं, क्यों नहीं सुनता, इसका मतलब हमें शिकार करने की कला नहीं है। लेकिन शेर की शिकार तो बड़ी सावधानी से की जाती है, ऐसे नहीं कि शेर की शिकार करने के लिए जाओ और शेर ही उसको फाड़ कर रख दे। अगर उसके पास हथियार ठीक न हो तो शेर ही उसको मार देगा। शेर की शिकार करने की बहुत बड़ी कला होती है। तो इसी तरह किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाओ और वही कहे अरे तुम तो ब्रह्मा कुमारी में फंस गए, तुम वहां कैसे जाते हो, तुम ऐसे बस शेर ने आपको फाड़ कर रख दिया, हम दोबारा ज्ञान में ही आएंगे नहीं। तो ऐसे हमें बिना हथियार का बिना कला का शिकार नहीं करनी है। पहली कला सीखनी, अपना निश्चय हो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, निश्चय ये पक्का होगा वही शिकार कर सकता है। इसीलिए शिकार करने के संस्कार भी डालने। सप्ताह में एक दिन शिकार करने का दिन निकालो, संडे के दिन वगैरह जब फ्री होते हैं, और जंगल तो सभी के चारों तरफ भरा पड़ा है, शेर तो बहुत उसमें घूमते रहते हैं हर एक की सिटी में। अगर नहीं मरता तो कोई बात नहीं, उसको कम से कम जाली में तो फंसा सकते हैं, सेंटर में तो ला सकते हैं ना, बाकी मारने का काम बहने कर ही लेगी, लेकिन आधा हिस्सा किसका मिलेगा, आपका भी हो जाएगा। इसलिए जो सेवा करता, क्योंकि ये जब सेवा करने में किसी को ज्ञान सुनाने में जब बिजी हो जाएंगे तो कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकली वश हो जाएंगी। अगर बीजी ये बाबा ने क्यों सेवा का चांस दिया, क्योंकि इसे भी भाग्य बनता है, दुआएं मिलते हैं, बीजी होते हैं, इसे हम कर्मेंद्र जीत भी बन सकते हैं। इसलिए ये जरूर हमें क्या करना है, सेवा करनी है। और राजा कभी छिप नहीं सकता, इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है, यही वो संस्कार डालने हैं, राजाओं के संस्कार डालने हैं। फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। आम को क्यों कहा? क्योंकि आम ऊपर से सख्त है, मुलायम है, और अंदर से सख्त है। नारियल को क्यों कहा नहीं राजा? क्योंकि नारियल ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। तो इसी तरह राजा उसको कहा जाता है जो ऊपर से नरम है और अंदर से अपने नियम संयम में जो कड़क है, जो नियम मर्यादा में रहता है, उसको कहेंगे राजा। ऊपर से तो कड़क है, मैं जैसा कहता ऐसे करो, वो करो, वो करो, और खुद कुछ नहीं करेंगे, वो राजा नहीं है। ऐसे को लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, उधर मुंह क्या हमको पता आप कैसे जाओ बोलेंगे। माना कथनी और करनी हमारी एक हो, नहीं तो पंडित, पंडित की तरह औरों को सुनाया और खुद कुछ नहीं किया, वो राजा नहीं बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है, आम बनना है, नारियल नहीं बनना है। और फलों का राजा आम को ही क्यों कहा? क्योंकि आम छाया देता है। जब कोई धूप से कोई थक के आता है तो किस पेड़ के नीचे जाकर सोएगा? आम के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा तो छाया तो छोड़ो, कोई नारियल गिर करके उसका सिर भी टूट जाएगा। इसीलिए हमें भी क्या करना है, औरों को सुख देना है। अगर कोई संपर्क में आया, उसको दुख दिया, परेशान किया, उसको ऐसी कोई बातें सुना करके उल्टी सुल्टी उसका दिमाग घुमा दिया, उसको राजा नहीं कहेंगे। इसीलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है, सबको छाया देना है, सुख देना है, अभिमान से मुक्त बनना है। कोई भी कला आई, विशेष आए, उसका अभिमान ना हो, ओ राजा। तो चेक करना है क्या ये संस्कार मेरे हैं, पालना के संस्कार हैं, तब वो राजा बन सकता है। इसीलिए स्वराज्य की स्थिति में देखना है। और ये स्वराज्य किसका रहेगा? लास्ट में इस मुरली में बाबा ने इस स्वराज्य की बातें सुनाते सुनाते लास्ट में बहुत अच्छी एक बात बताई, अमृत वेले की बात। क्योंकि राजा बनने का आधार है अमृत वेला का योग। अमृत वेला योग करने से आत्मा में शक्ति आते, पावर आते हैं। जब अमृत वेला बाबा से शक्ति लेंगे, पावर लेंगे, तब इंद्रिया शासन में चलेंगी। तो इसीलिए अगर हमें राजा बनना है तो अमृत वेला का योग बड़ा हमारा पावरफुल हो, और इससे ही हम अपना गवाया हुआ राज्य वापिस ले सकते हैं। लास्ट में इसकी कहानी सुना करके पूरा करते हैं। एक राजा था, वो राजा सारे संसार में मशहूर था। तो उस राजा के पास एक सन्यासी गया। उस सन्यासी ने क्या देखा, ये राजा ऐसा इतना मशहूर क्यों है? उसने बहुत कुछ जानने की कोशिश की लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बात उस सन्यासी के ध्यान में आई, राजा रोज सवेरे सवेरे जल्दी उठता है और हर एक के पास जाता है, कैसे हो भाई, क्या हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, सबको अटेंशन खिंचवाता है। और राजा जल्दी उठने के कारण, हर एक के पास जाने के कारण, उसके राज्य में सब अलर्ट रहते हैं और उसके कारण वो राजा मशहूर था। तो सन्यासी फिर चला गया। तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, उसी सन्यासी को क्या पता चला, वो राजा तो कंगाल हो गया। तो सन्यासी को तो यकीन नहीं हुआ, तो क्या करता है, उस राजे के पास फिर दोबारा जाता है और वो जानने की कोशिश करता है कि राजा कंगाल क्यों हुआ है। तब उसको लास्ट में यह पता चला, उसकी जो पहली दिनचर्या रही थी और अभी की बदल गई है। पहले तो जल्दी उठता था लेकिन अब देखा आराम से सोया पड़ा है, और उसके कारण, राजा सोने के कारण मंत्री का भी ध्यान नहीं है, वो इधर का माल उधर करता है, और राजा सोने के कारण किसी का अटेंशन न होने के कारण उस राजा के अंदर चोर घुसते थे और राजा का माल लूट लेते थे, कोई किसी को नहीं देखता था, और उसके कारण उसकी राजाई कंगाल हो गई। तो फिर उस सन्यासी को लगता है कि क्या करे राजा जो अच्छा बन जाए, फिर से जल्दी उठे। तो उसके लिए क्या करता है, वो युक्ति अपनाता है एक, और राजा को कहता है, राजन मैंने आपके महल के पास एक हंस को देखा और उस हंस के अंदर ऐसी विशेषताएं जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। तो राजा कहता है, हां मुझे भी मशहूर होना है। कहा कि तो फिर आपको हंस को देखना पड़ेगा। उसमें कहा देख लूंगा, लेकिन कहा कि वो सवेरे सवेरे जल्दी आता है। तो कहता है उसमें क्या है, मैं पहले उठता था तो अभी भी उठूंगा। फिर ठीक है कहा तो कोई देखने के लिए उठो। फिर राजा क्या करता है, रोज सवेरे सवेरे उठता है और हंस को देखने के लिए चारों तरफ चक्कर लगाता है। रोज की तरह चोर आते हैं, जब चोर आए थे तो उन्होंने, चोरों ने क्या देखा, राजा तो चक्कर लगा रहे, तो सोचा चलो कल आएंगे, राजा को शायद पता चला होगा, चलो दूसरे दिन आते हैं। जब दूसरे दिन आए फिर राजा चक्कर लगा रहा था, फिर सोचते चलो कल आते हैं। ऐसे करते चोर रोज आते थे, लेकिन देखा कि राजा चक्कर लगा रहे चले गए, चोरों ने आना क्या क्या बंद किया, जिसके कारण उसके राजा में जो चोरी होती थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद मंत्री इधर का माल उधर करता था, जब राजा उठा हुआ है तो मंत्री भी अटेंशन रखने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका सब कुछ ठीक हो गया। फिर वही सन्यासी एक दिन उनके पास आया तो राजा को कहा कि आपने हंस को देखा। कहा कि मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे राजा में कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो ठीक ठाक हो गई जब से आपने वो कहा था तब से। तो फिर वो सन्यासी ने पूरी स्टोरी सुनाई, कहा कि मैंने यही युक्ति आपको बताई, अगर आपको ऐसे कहते थे आप सोते रहते इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो आप कहते कि तुमको क्या लेना देना, आप मेरा सिर काट देते, इसीलिए मैंने आपको युक्ति से बताया कि आपके राज्य में एक हंस आता है, तो ऐसे आप रोज उठा करो और क्या करो, अपना राज्य जैसे पहला था वैसे बनाए। तो राजा ऐसा ही करता है। तो ये कहानी हमारी अपनी है, हम भी राजा थे सतयुग में, लेकिन राजा थे धीरे धीरे क्या हो गया, उस समय की राजा अभी भी मशहूर है, लेकिन वो राजा धीरे धीरे मैं राजा हूं ये भी भूल गए, आत्मा राजा सो गया, और आत्मा राजा सोने के कारण इस शरीर रूपी महल में क्या हो गए, चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह, और चोरों ने क्या क्या पूरा राजा को लूट लिया। मंत्री इधर का माल उधर करने लगा, बुद्धि इधर उधर जाने लगी, सब पूरा राजा में गड़बड़ हो गई। तो जैसा वो सन्यासी आया, इसी तरह बाबा आकर के क्या करता है, खुदा दोस्त, वो गीत में सुन रहे थे ना, खुदा दोस्त के उपकारों ने फिर गंवाया हुआ राज्य क्या हो गया, वापिस दिलाया, कितने उपकार है उसके, गीत सुना ना। तो इसी तरह उस खुदा दोस्त ने आकर के क्या किया, हमें एक युक्ति बताई, कौन सी, आपके इस महल के चारों तरफ से एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन कितना बजे आता है, सवेरे सवेरे जल्दी आता है, आप उसको देखने के लिए उठो। अगर आप उसको देखने के लिए सवेरे सवेरे उठेंगे, अमृत वाला योग करेंगे, तो चोर आना बंद हो जाएगा। आप देखो जिस दिन आप अमृत वाला चित्र करो, पावरफुल करो, सोल कॉन्शियस अवस्था बनाएंगे, तो उसी दिन माया नहीं आएगी, सभी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। जैसे घर में कोई मम्मी पापा है तो बच्चे झगड़ेंगे नहीं, अगर मम्मी पापा नहीं है झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसी तरह शरीर में आत्मा विमनी स्थिति है तो सभी कर्मेंद्रियां वश में है, कंट्रोल में है। अगर आत्मा विमनी स्थिति नहीं है गड़बड़, और जिसके कारण शक्तिहीन बनते हैं। इसीलिए अगर मुझे राजा ही प्राप्त करनी है तो क्या करना है, अमृत वेला योग पावरफुल करना है। अमृत वेला करने से आत्माभिमानी स्थिति होगी, और आत्माभिमानी स्थिति होने से हमारा स्वराज्य बढ़िया अच्छा चलेगा। इसलिए अभी हमें यही पुरुषार्थ करना है, चेक करना है कि मेरे राज्य में एक धर्म है, एक राज्य है, सुख शांति संपन्न है। अगर नहीं है तो कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देती है, उसको चेक करके उसे बातें करते हैं, उसको ठीक करना है और तब जाकर के भविष्य का राज्य मिलेगा। तो ऐसा हमें क्या करना है, यह आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।